तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुरेव परं ब्रह्म तस्मै श्रीगुरवे नमः। समस्तजनकल्याणे निरतं करुणामयं नमामि चिन्मयं देवं सद्गुरुं ब्रह्मविद्वरं वसुदेवसुतं देवं कंसचानूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं।
हम लोगों ने देखा था कि अर्जुन ने एक प्रश्न किया भगवान को कि मन जो है बहुत चंचल है, ये कैसे इसको निग्रह किया जा सकता है। तो भगवान ने कहा देखो हठ निग्रह तो नहीं होगा, क्रम निग्रह से होगा। क्रम निग्रह क्या है? तो अभ्यास और वैराग्य, इस अभ्यास और वैराग्य से अगर हम करेंगे तो मन निग्रह हो जाएगा। फिर भगवान कहते हैं वश्यात्मना तो यत्ता शक्यो अब आप तुम उपायता, जो उपाय मैंने आपको अभी बताया वैराग्य और अभ्यास, जो इस तरह से अभ्यास करेगा, जो इसका उपाय को व्यवहार करेगा, उसका मन वशीकरण हो जाएगा, बस में आ जाएगा। और बस में जब आ जाएगा तो उसको जो है सफलता मिल जाएगी, ऐसा भगवान कहते हैं। और जिसने उपाय को काम में नहीं लगाया, भगवान ने जो उपाय बताए कि अभ्यास और वैराग्य करो तब आपका मन जो है नियंत्रण में आएगा, निग्रह में आएगा, पकड़ में आएगा, तो अगर कोई नहीं करता है तो वो उसके अंदर ध्यान में असफल रहेगा। फिर अर्जुन ने एक और प्रश्न कर दिया, भगवान समझ में आ गया कैसे मन को निग्रह करना है। आपके कहने के अनुसार अब हम जो है शुरू कर रहे हैं, साधना शुरू करेंगे। तो साधना शुरू करेंगे फिर कहते हैं अयति श्रद्धा पे तो योगाचरित मानस, अयति यत्न पूरा नहीं है, मगर श्रद्धा है। आपने जो बताया, जो साधना बताई, उसके अंदर हमारी श्रद्धा पूरी है। अप्राप्य योग संसिद्धि, मगर हमको जो है अल्टीमेट जो हमको मिलना चाहिए वहां तक नहीं पहुंच पाए। काम गतिम कृष्ण गच्छति, ऐसे लोग का क्या होता है? जिसने साधना की भगवान के कहने के अनुसार, उसने कर्म योग वगैरह किया, काम्य कर्म छोड़ दिया, और उसके बाद में फिर से उसका मन विचलित हो गया और वो संसार में फिर चला गया, तो ऐसे व्यक्ति का क्या होता है? या दूसरा एक और रीजन हो सकता है कि हमने साधना शुरू की मगर हम जो है साधना पूरी कंप्लीट नहीं कर सके, कंप्लीट के पहले ही, पूर्ण होने के पहले ही शरीर छूट गया। बस ये दो घटनाएं घट सकती है, हमने साधना शुरू की या तो हम विचलित हो गए, उसको योग भ्रष्ट कहेंगे, और दूसरा साधना से हम विचलित नहीं हुए मगर शरीर छूट गया, तो वो भी योग भ्रष्ट है। तो केवल दो किस्म के योग भ्रष्ट हो सकते हैं। तो इसमें अर्जुन कहते हैं एतन में संशय कृष्ण छेतुम अरति अशेषता, ये हमारा संशय है, आप जो है इस संशय का छेदन कीजिए, इस संशय को दूर कीजिए। तद अन्य संशय छत्ता न ही उपपद्यते, आपको छोड़कर दूसरा कोई आदमी नहीं कर सकता इसका, इसका निवारण, मेरे इस संशय का निवारण दूसरा कोई नहीं कर सकता। क्यों दूसरा कोई नहीं कर सकता? क्योंकि आप ईश्वर हैं, आप सर्वज्ञ हैं, आप हर जीव के भूतकाल का, भविष्यकाल का और वर्तमान काल का ज्ञान आपको पूरा है। तो जो जीव ये शरीर छोड़कर जाता है, भले ही वो योग भ्रष्ट हुआ हो, या तो शरीर छूट गया या वो भोग विलास में फिर से चला गया। तो ऐसे भक्ति जब जब जाते हैं तो उनका प्रयाण के बाद में उनका क्या होता है, इसके बारे में हमको बताइए, क्योंकि उनके तो दोनों ही चले गए ना, न उसने कोई काम कर्म करना बंद कर दिया तो यहां का भी सुख नहीं उसको मिल रहा है, और दूसरा वहां तक अपने जो उसका गोल था, जो उसका लक्ष्य था, वहां तक भी नहीं पहुंचा। ज्ञान के प्राप्त के बाद में परमानंद हो जाता, परमानंद प्राप्ति होती है, वो भी नहीं हुआ, तो न इधर का रहा न उधर का रहा। तो ऐसे साधक का क्या होता है, इसके बारे में बताइए आप। तो भगवान कहते हैं कि पार्थ नहीं वे ना मुत्र विनाशस्तस्य विद्यते, बोले उसका ना तो यहां विनाश हो सकता है और न ही बाद में भी हो सकता है। जो स्पिरिचुअल साधना करते हैं, आध्यात्मिक साधना करते हैं, उनको यहां पर भी उनका विकास होता है, मैटीरियली एंड स्पिरिचुअली दोनों तरीके से उसका जो है उसको लाभ मिलता है। भगवान कहते हैं उसकी दुर्गति तो हो ही नहीं सकती। नहीं कल्याणकृत कश्चित दुर्गतिम तादगच्छति, जो कल्याणकृत काम कर रहा है तो अच्छा काम है, तो उसको दुर्गति कैसे मिलेगी। भगवान की खोज कर रहे हैं, भगवान की पाने की साधना में लगे हुए हैं, ऐसा साधक को दुर्गति क्यों प्राप्त होगी, तो अच्छी बात है। तो दुर्गति बोलते हैं यहां भी नहीं मिलेगी और उसके मृत्यु के बाद भी नहीं मिलेगी। तो कहां जाता है ऐसा व्यक्ति, तो पहले कहते हैं पुण्य प्राप्य पुण्य कृताम लोकान उचित्वा शाश्वतीम समा सुची नाम श्रीमताम गेहे योग भ्रष्टो अभिजायते, जिसने साधना शुरू की। अच्छा आपको एक चीज और हम बता दें, ठीक से समझ लीजिए, साधना मतलब ये किस योगी की बात कर रहे हैं, किस साधक की बात कर रहे हैं, जिसने कर्म योग किया है, जिसने ज्ञान से कर्म संन्यास किया है, चौथा अध्याय, पांचवें अध्याय के अंदर जो जो उसको बताया गया है उसके हिसाब से उसने साधना की है। हम कर्ता से अकर्ता कैसे बनेंगे, वो पूरा का पूरा उसने किया है, करने के बाद में प्रवृत्ति मार्ग को छोड़ दिया है, निवृत्ति मार्ग को पकड़ लिया है। निवृत्ति मार्ग को पकड़ लेने का मतलब है वो सर्व कर्म संन्यास किया उसने। सर्व कर्म संन्यास का मतलब क्या होता है कि वो अब श्रवण मनन निधि ध्यासन में लगा हुआ है। तो हम किस साधक की बात कर रहे हैं, जिसने इतनी साधना कर ली है, उस वो आदमी अगर योग भ्रष्ट हो जाता है या उसका शरीर छूट जाता है तो प्राप्य पुण्य कृताम लोकान उसित्वा शाश्वति समा, तो उसको जो है हायर लोक में, ऊंचे लोक में उसको भगवान भेजते हैं। तो ये पुण्य कृताम क्या है कि अश्वमेध आदि यज्ञ करके जहां जिस लोक में आज लोग जाते हैं उस लोक में भेजते हैं। देखो हम लोगों ने अश्वमेध यज्ञ नहीं किया, मगर हमारी साधना अगर पूरी नहीं हुई तो कहां जाएंगे। अश्वमेध यज्ञ करने वाले जहां जाते हैं वहां पहुंचेंगे हम। वहां जाके कितने दिन रहना होगा, बोले बहुत दिन रहेंगे, बोले भोग करो। ऊपर के लोकों में भोग की जो है डिग्री बड़ी अच्छी है, यहां के मनुष्य लोग के भोग से बहुत ज्यादा भोग वहां अच्छे हैं, तो वहां वो कहेंगे तुम भोग करो, भोग करो, अच्छा रहो। फिर सूची नाम श्री मदाम के हे योग भ्रष्टो अभी जाए थे, फिर उसका जन्म कहां होगा। जन्म उसका फिर आपका मनुष्य जन्म में आएगा। आपको हमने आगे भी बताया है कि ज्ञान दो जगह मिलता है, या तो आपको मनुष्य लोक में मिलेगा नहीं तो ब्रह्म लोक में मिलेगा, ब्रह्मा जी देंगे, बीच वाले किसी लोक में नहीं मिलता है। तो इसको कहां भेजा गया, इसको हायर लोक में भेजा गया, हायर लोक में गया, वहां पर वो सुखपूर्वक रहता है। रहने के बाद में फिर मनुष्य लोक में भेजना होगा, क्यों भेजना होगा, क्योंकि मनुष्य लोक में ही हमको सिद्धि प्राप्त हो सकती है, ज्ञान प्राप्त हो सकता है। तो किस परिवार में भेजेंगे, तो बोलते हैं सूची नाम। सूची नाम का मतलब क्या है, जहां पर शास्त्र के अनुसार जो परिवार कर्म करते हैं, शास्त्र का अनुसरण करते हैं, यानी धार्मिक लोग हैं, धार्मिक लोग हैं। श्रीमताम के है, माने उनके पास विभूति है, मतलब धन है, पैसे हैं। तो ऐसा व्यक्ति को ऐसा परिवार मिलता है। देखो साधना करने से आपको अगर नहीं हम उसको कंप्लीट कर पाए इस जीवन में तो दूसरा जीवन कैसा मिलेगा। दूसरा जीवन एक अच्छा परिवार, धार्मिक परिवार मिलेगा, धनी परिवार मिलेगा। क्यों धनी परिवार में लगा? अरे बची कुची जो थोड़ी बहुत कामना रहेगी उसके लिए आपको चिंता नहीं करनी है, आपको उसके लिए पैसे नहीं कमाने हैं, वहाँ पैसे वगैरह सब आपके लिए रखे हुए हैं। सुचि नाम गेहे योगो भ्रष्ट अभिजायते। ये तो एक का हुआ जो साधना करके कंप्लीट होने के पहले योग भ्रष्ट हो गया, विषय के आनंद में चला गया, विषयों के आनंद में गया बोल के भगवान कहते हैं तुमको आनंद चाहिए था, ये पेटी आनंद, इससे बढ़िया आनंद तुमको ऊंचे लोक में देते हैं, चलो वहां रहो कुछ दिन तक, उसके बाद में फिर नीचे आ जाओ, नीचे भी फिर तुमको धनी घर में हम देंगे जगह। कितना लाभ है देखो, साधना करने का लाभ देखो। और ऊपर से एक चीज, फिर से मनुष्य जब जन्म मिलेगा, कितनी बड़ी बात है ये। और दूसरा उसके अंदर वैराग्य पूरा है मगर उसका शरीर गिर गया, ऐसा योग भ्रष्ट को क्या कहते हैं? तत्र ते बुद्धि संयोग में लभते नो अथवा योगी नाम एव कुले भवती धीमताम। दूसरा जो है उसको कहां भेजेंगे? योगी कुल में भेजेंगे, योगी कुल। देखो ये ऊपर जो धनी परिवार का ना, धनी परिवार के अंदर देखो बुद्ध, भगवान बुद्ध धनी परिवार में जन्म हुआ, उन्होंने अपनी साधना वहां से शुरू कर दिया, फिर निकल पड़े, फटाफट हो गया काम, हो गया। अच्छा, या योगी कुल का, योगी कुल का मतलब ये उतने धनी नहीं होते हैं, उनका जो है इन सब तरफ में ध्यान नहीं रहता है। योगी कुल के अंदर दोनों पति पत्नी अपना जो है साधना करके आगे बढ़ने की इच्छा करते हैं, ऐसे कुल में जन्म बहुत मुश्किल है क्योंकि उनका इच्छा ही नहीं है पुत्र वगैरह करने की। ऐसे कुल में जन्म हुआ था रामकृष्ण का, ऐसे कुल में जन्म हुआ था शंकराचार्य का। माँ कैसी थी? अरे माँ गरीब थी, योगी कुल था। देखो और कैसे फटाफट साधना शुरू हो गई, फटाफट फटाफट उनको गुरु मिला, अपना काम कंप्लीट कर दिया। एतद ही दुर्लभतरम योगे जन्म यदि तिसम यत ईदृशम, ऐसा जन्म जो है इस लोक में बहुत दुर्लभ है, बहुत दुर्लभ है, योगी कुल में जन्म पाना बहुत दुर्लभ है। देखो वेद व्यास को भी आप देखो, कौन थे उनके पिता? तो पराशर ऋषि, आश्रम ऋषि, वहां से देखो फटाफट हो गया। और ज्ञानेश्वर, ज्ञानेश्वर का भी ऐसा ही है, उनके पिता कैसे थे? ओ इंटरेस्ट ही नहीं था उनका, वो तो छोड़ के संन्यास में चले गए। जब उनको पता लगा उनके गुरु को कि अरे ये तो संन्यास ले लिया है, इसकी तो पत्नी है, फिर तो भेज दिया संन्यास का, जाओ घर जाओ। फिर उनके चार पुत्र और पुत्री हुई और सब एक से एक जेम। फिर क्या होता है 43वां श्लोक,
तत्र तम बुद्धि संयोगम लभते पौर्वदेहिकम, लभते पौर्वदेहिकम यतते चततो भूयः, यतते चततो भूयः संसिद्धौ कुरु नंदन, संसिद्धौ कुरु नंदन तत्र तं बुद्धि संयोगं लभते पौर्वदेहिकं यतते चततो भूयः संसिद्धौ कुरु नंदन।
तत्र मतलब अब जन्म हो गया है, जन्म हो गया तो उस जन्म में तम पौर्वदेहिकम, पौर्वदेहिकम जो जो पिछले जीवन में प्राप्त किया था उस बुद्धि के साथ में एक साथ हो जाता है, बुद्धि संयोगम, बुद्धि संयोगम। अब आप लोग चूंकि वेदांत पढ़ते हैं आपको पता है कि एक शरीर से दूसरे शरीर के अंदर जो सूक्ष्म शरीर जाता है उसमें मन और बुद्धि भी हैं, उसके अंदर 17 आइटम हैं जिसमें 2 आइटम मन और बुद्धि भी है। तो इसका मतलब हो गया कि जो हमारे पास मन बुद्धि अभी है वो पिछले मिलियंस ऑफ लाइफ से चलती आ रही है, जो सूक्ष्म शरीर है वो चलता आ रहा है, वो चलता रहेगा। तो वो जो है जितना भी आपने साधना अभी की है, अब तक की है, वो साधना के हिसाब से आपका मन उतना शुद्ध हो गया या संस्कारित हो गया, संस्कारित हो गया, वैसी वासना बन गई आपके अंदर में, वैसी वासना बन जाती है। तो ये वासना अब दूसरे जब शरीर में जाएगा तो वो तो है ना, उसके साथ में है। तो इस जीवन के अंदर में जितना कुछ प्राप्त किया है, जितना हम अग्रसर हो पाए हैं, उसका लाभ वहां मिलेगा, उसका लाभ हमको दूसरे शरीर में मिलता है। बुद्धि संयोगम लभते, तो जो भी सोच ज्ञान परिपक्वता पिछली लाइफ में हमको मिली वो हमको वहां मिल जाएगी, वहां मिल जाएगी। तो ऐसा मत सोचना कि हमको याद रहेगा कि हमने पिछले जन्म के अंदर में चिन्मय मिशन यमरुत्री के अंदर हिंदी कक्षा की थी, ऐसा नहीं याद रहेगा। तो क्या होगा, बोले बड़ा जल्दी रिकैपिचुलेट कर लेगा वो, एक बार बोलो फट 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 पकड़ लेगा, अरे हाँ ये तो ठीक है ठीक है ठीक है, वो बढ़ता जाएगा, बहुत जल्दी बढ़ता जाएगा, अग्रसर होता जाएगा। तो हेतु क्या है इसका, कारण क्या है? कारण ये है कि वो जो है पिछले जीवन का जो मन है, मन बुद्धि है, वो सूक्ष्म शरीर उसको आगे मिलता है, इसी के कारण वो अग्रसर हो पाएगा। कैसे, बोले एक एग्जाम्पल देते हैं आप समझ में आएंगे। जैसे सुप्त प्रबुद्धवत, सुप्त प्रबुद्धवत मतलब आप सोने गए, तो सोने के पहले जो आपका ज्ञान था, वो ज्ञान जब आप सोए रहते हैं तो वो ज्ञान उपलब्ध नहीं होता है, मैं जागते हैं फिर मिल जाता है। ठीक उसी तरह से जो आपका ज्ञान पिछले जीवन में था सुप्त प्रबुद्ध, अब नया जीवन में आया, मगर इंस्ट्रूमेंट तो वही है, इंस्ट्रूमेंट वही है, इसलिए आपको वो पूरा ज्ञान मिल जाता है। तो आपने जो कुछ भी साधन चतुष्टय या सर्वकर्म संन्यास श्रवण मनन निधि ध्यासन पिछले जन्म में किया, अब वो उसके आगे बढ़ता, ततः ततः मीन्स अनंतरम, उसके बाद जब वो पुरानी संबुद्धि से संयोग हुआ तो भूय यतते, फिर से उसने साधना शुरू कर दी, भूय भूय मीन्स अगेन, फिर से शुरू कर दी, यत्न करना शुरू कर दिया। अब वो चेष्टा कैसी है, अधिकतम चेष्टा करता है, अधिकतम चेष्टा, क्यों अधिकतम चेष्टा करता है, जैसे सोने के बाद जब हम जागते हैं तो हमारे शरीर में फुर्ती बहुत होती है, स्फूर्ति, ठीक उसी तरह से ये इसको जब नया शरीर मिलता है तो उसके अंदर भी स्फूर्ति बहुत आ जाती है, बहुत स्फूर्ति रहती है, अब वो बहुत यत्न करना शुरू कर देता है। अब क्योंकि आगे से ही उसके अंदर सम अमदम से युक्त पहले भी साधना कर चुका है, तो मोक्ष की संसिद्धि की प्राप्ति के लिए, मोक्ष की प्राप्ति के लिए अब और तेजी से आगे बढ़ना शुरू करता है। भगवान कहते हैं कि अर्जुन तुम भी योग भ्रष्ट हो, देखो तुम भी योग भ्रष्ट हो, क्यों, तुमको सूची नाम श्रीमताम गेहे जन्म मिला है, सूची नाम पांडव लोग सब धार्मिक काम करते थे, श्रीमताम धनी थे। गौतम काम ने आपको आगे ही बताया, गौतम बुद्ध का भी, वो भी सूची नाम श्रीमताम गेहे में जन्म हुआ था। अच्छा भगवान बताते हैं कि देखो तुम अर्जुन योग भ्रष्ट हो, तुमको ज्ञान हम अभी ये युद्ध भूमि में दे रहे हैं, मगर इससे भी काम हो जाएगा तुम्हारा, क्योंकि तुम जो है उसके लिए ठीक हो, तुम्हारे में वो योग्यता है कि इस रणभूमि के अंदर भी तुम ज्ञान ले सकते हो। वैसे देखो ये ज्ञान जो है ना, ये बहुत शांत जगह में, एकांत जगह में दिया जाता है, इसी लोग जब हम लोग वेदांत पढ़ते हैं ना, तो वेदांत सब समय सवेरे पढ़ना पड़ता है जब मन शांत रहता है, मगर अर्जुन ऐसा योग्य था कि रणभूमि के अंदर भी उसने ज्ञान ले लिया, ले लिया उसने।
पूर्वाभ्यासेन तेनैव, पूर्वाभ्यासेन तेनैव रियते यवशोऽपि सः, रियते यवशोऽपि सः जिज्ञासुरपि योगस्य, जिज्ञासुरपि योगस्य शब्दब्रह्माति वर्तते, शब्दब्रह्माति वर्तते पूर्वाभ्यासेन तेनैव रियते यवशोऽपि सः जिज्ञासुरपि योगस्य शब्दब्रह्माति वर्तते।
अच्छा देखो, यहाँ पर ये श्लोक जो है उन लोगों के लिए है जिन्होंने सुची नाम श्रीमान गेहे, जिसने श्रीमताम गेहे जिन्होंने जन्म लिया, धनी परिवार में जिन्होंने जन्म लिया। पूर्वाभ्यासेन तेन एव ह्रियते ही अवसा पिछा, पूर्व के अभ्यास के कारण, पिछले जन्म के अभ्यास के कारण ह्रियते आकर्षित हो जाता है। कैसे? अवसा, जैसे मानो पराधीन हो, ऐसा जो है जिज्ञासु अपि योगस्य शब्द ब्रह्म अतिवर्तते, ऐसा जिज्ञासु जो है शब्द ब्रह्म, शब्द ब्रह्म मतलब है वेद के अंदर जो कर्म कांड कहा गया है, अब उसकी रुचि उस कर्म कांड के अंदर नहीं, अतिवर्तते, अब वो कर्म कांड का काम खत्म हो गया है, अब उसको ज्ञान चाहिए। तेन पूर्वाभ्यासेन, तो पिछले जन्म का ज्ञान संस्कार। देखो हम लोगों ने देखा है कि हम सब अपनी अपनी वासना के अनुसार काम करते हैं, कि नहीं, जिसकी जो वासना है उसके हिसाब से कोई इंजीनियरिंग पढ़ता है, कोई मेडिसिन पढ़ता है, कोई लॉयर बनता है, सब अपना अपनी वासना के अनुसार काम करते हैं। ऐसा तो होता नहीं है कि हम, अगर हम डॉक्टर हैं तो हमारा पुत्र भी डॉक्टर होगा, ऐसा नहीं होता है, कभी कभी हो जाता है, मगर हम हमारे बच्चों की सबकी वासना अलग अलग है, कोई कुछ बनना चाहता है, कोई कुछ बनना चाहता है। ठीक उसी तरह से ज्ञान संस्कार का खाता चालू रहता है, जैसे वासना का खाता चालू रहता है वैसे ही ज्ञान संस्कार का खाता भी चालू रहता है। अब वो ज्ञान संस्कार जो आपको पिछले जन्म मिला है वो तो जोर पकड़ेगा, आप तो अपने उस संस्कार के हिसाब से काम करेंगे ही करेंगे, ये तो हमें पता ही है। अवश्य अपी, वह खुद या अन्य लोग अगर न चाहे तो भी ज्ञान संस्कार उसको आकर्षित करता रहे, तुमको ये करना है, ऐसा आकर्षित करेगा। अच्छा, अब उसके अंदर अब भोग वासना नहीं है। देखो हम लोग देखते हैं यहां पर, जब बच्चे किसी तरीके से बाल विहार में आ गए, किसी तरीके से बाल विहार में आ गए, उसके बाद उन्होंने भजन करना शुरू कर दिया, कभी वो जो है हम लोग के जो प्रोग्राम के अंदर है प्रहलाद बन गया, वो उसका उसने कैरेक्टर का उसने नाटक किया, करते 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 बढ़ता गया, कौन रोकेगा उसको, कोई रोक नहीं सकता उसको, वो बढ़ेगा आगे। तो आप क्या सोचते हो कि वो बिना संस्कार के इतने बच्चे यहाँ आते हैं? जो बच्चे यहाँ पर आते हैं उनके पूर्व जन्म का संस्कार है, नहीं तो नहीं आएंगे यहाँ पर, तो पूर्व जन्म के संस्कार से यहाँ पर आ जाते हैं। अब उसके अंदर भोग वासना जो है वो ज्ञान संस्कार से भस्म हो गई, भोग की वासना नहीं है, ज्ञान से उसको अनात्मा का ज्ञान है कि अनात्मा दुखी देता है, क्यों हम अनात्मा में घूमेंगे, तो भोग वासना अब उसके अंदर खत्म हो गई, क्योंकि भोग वासना उसने ऊपर वाले लोकों में जाकर वहां पर उसने मजा किया है, धनी गृह में जो जन्म लेता है उसके आगे वो ऊंचे लोकों में घूम के आया है। योगस्य जिज्ञासु, अब ज्ञातुम इच्छा जिज्ञासा, अब उसकी मोक्ष की जिज्ञासा है, बहुत भोग कर लिया और हमें भोग नहीं करना है, अब हमें क्या चाहिए, अब हमें मुक्ति चाहिए। शब्द ब्रह्म अतिवर्तते, शब्द ब्रह्म मतलब वेद होता है, वेद के अंदर मेजर पोर्शन क्या है, कर्म कांड है, तो शब्द ब्रह्म अतिवर्तते मतलब कर्म कांड के अंदर उसकी रुचि नहीं है, अब साकाम कर्म में उसकी रुचि नहीं है। क्यों रुचि नहीं है? अरे साकाम से उसने निष्काम कर्मयोग तो पिछले जन्म में किया, ज्ञान कर्मयोग संन्यास किया उसने, श्रवण मनन निधि ध्यासन शुरू कर दिया था, उसको फिर सकाम कर्म क्या करना है, उसको अब सकाम कर्म का कोई जरूरत नहीं है। अच्छा नेक्स्ट,
प्रयत्नाद्यतमानस्तु योगी संशुद्ध किल्बिषः, योगी संशुद्ध किल्बिषः अनेक जन्म संसिद्धः, अनेक जन्म संसिद्धः ततो याति परां गतिं, ततो याति परां गतिं। प्रयत्नाद्यतमानस्तु योगी संशुद्ध किल्बिषः अनेक जन्म संसिद्धः ततो याति पराम गतिम।
अब ये श्लोक जो है अब दूसरे किस्म के योग वृक्ष की बात कर रहा है। पिछले श्लोक के अंदर हमने देखा कि जो धनी कुल में पैदा होता है, अब ये जो है योगी कुल में जो जन्म लेने वाला योग वृक्ष की परम गति की प्राप्त का कथन है। देखो भगवान कितने सुंदर तरीके से बताते हैं, कोई योग भ्रष्ट हुआ उसके दो केवल कारण हो सकते हैं। पहला कारण वो वैराग्य पूरा था मगर शरीर छूट गया, दूसरा वैराग्य कम था योग भ्रष्ट हो गया। तो जिसका वैराग्य कम था योग भ्रष्ट हो गया मतलब भोग में चला गया, भगवान कहते तुम भोग कर लो, चलो ऊपर वाले लोक में और जाओ, वहाँ बहुत दिन तक रहो, रहने के बाद में फिर तुमको सुचि नाम श्रीमताम गेहे जन्म दे देते हैं। ये एक हुआ, वहाँ से वो अपनी साधना करके वो पार कर जाता है। दूसरा जो है जिसका शरीर छूट गया उसको कहाँ भेजते हैं, योगी कुल में भेजते हैं। योगी कुल में जाके वो क्या करता है, वहाँ पर प्रत्नयात यत्मान तू योगी संशुद्ध किलबिश है, वहाँ पर वो प्रयत्न पूर्वक अभ्यास करना शुरू करता है। फिर अच्छा फिर उससे क्या होता है, संशुद्ध किलबिश है, संपूर्ण पापों से रहित हो जाता है, अनेक जन्म संसिद्धि, पिछले अनेक जन्म के संसार के बल से हो रहा है ये, अनेक जन्म के संस्कार के बल से ये सिद्ध होता है और उसको पराम गति मिल जाती है। तो ये योगी कौन है, वो भाग्यवान है जिसने योगी कुल में जन्म लिया, जिसने योगी कुल में जन्म लिया वो भाग्यवान योगी यहां पर है। प्रत्यात यत्मान, वह योगी पूर्व जन्म से भी ज्यादा चेष्टा करता है, पूर्व जन्म में वह अयति था यानी पूरा प्रयत्न नहीं कर पाया। संशुद्ध किलबिश है, जो भी पाप बचे थे वो सब खत्म हो गए, अब वो कैसी स्थिति में, अब शुद्ध सत्व में आ गया है, हम शुद्ध सत्व में आ गए। कई बार हमने बताया कि हम लोग का जो है, हम लोग जब जन्म लेते हैं तो हम लोग रजस एंड तमस प्रधान होते हैं, हम लोग के अंदर शुद्ध कम होता है, थोड़ा सा होता है, प्रयत्न से हमको शुद्ध सत्व में जाना है, सत्व गुण को बढ़ाना है। अनेक जन्म संसिद्धि, ये मन की शुद्धि एवं आत्मज्ञान पिछले अनेक जन्म के संस्कार से चला आता है। आप लोग बैठ के जब गीता सुनते हो तो मत सोचो कि ये पहला आपका जन्म सुन रहे हो और आपका मन शुद्ध पिछले जन्म से होता आ रहा है, बोल के आपको ये ऐसा चांस मिल रहा है। अगर मन शुद्ध नहीं होगा तो नहीं आप बैठोगे। जिनका मन शुद्ध नहीं होता है वो कहाँ है, वो ईटी का अनात्मा में घूम रहे हैं। जिनका मन शुद्ध होता है वो यहाँ आएंगे। ततः याति पराम गति, उसे अब पराम गति मोक्ष मिल गया। तो गुरुदेव लिखते हैं कि पाप पुण्य दोनों ही बांधते हैं, योगी ध्यान करके उसमें सफलता प्राप्त करके सारी वासना को खत्म कर लेता है। सारी वासना, हमारे बीएमआई चार्ट के अंदर जो वासना है वो कैसे खत्म होगी, ये वासना मतलब अज्ञान है, जब ज्ञान हो गया तो वासना पूरी की पूरी खत्म हो गई। अब कई लोग क्या करते हैं कि देखो हमको जो है पाप कर्म नहीं करने हैं, हमको खाली पुण्य कर्म करना है, मगर उनको ये नहीं पता लगता है कि पुण्य कर्म करने से भी केवल आपको जन्म फिर से लेना होगा, भले ही ऊंचे लोक में जाना पड़े, ऊंचे लोक में आपको जन्म होगा मगर वहां से भी पुण्य जब खत्म हो जाएगा तो फिर वापस आना है, क्योंकि सारे के सारे 14 लोक जो हैं वो जो है परमानेंट नहीं है, सारे के सारे जो है संस्कृति संसार के अंदर जगत के अंदर आ जाते हैं। तो हम कितनी देर तक ऊपर नीचे लिफ्ट में करते रहेंगे, तो कभी ना कभी तो हमको निकलना पड़ेगा। तो गुरुदेव कहते हैं वासना पुंज ही मन है, वासना पुंज ही मन है, जब वासना ही खत्म हो गई तो मन खत्म हो गया, जब मन खत्म हो गया तो आपका ईगो भी खत्म हो गया। देखो ईगो खत्म होना मतलब हम अपने आप को जो इंडिविजुअल समझते हैं, सीमित समझते हैं, वो परिधि भी खत्म हो गई, वो लिमिटेशन भी नहीं रहा। मगर ऐसा है कि देखो बहुत कम लोग ऋषियों के बताए हुए मार्ग पर चल पाते हैं, बहुत कम लोग, ये जो मार्ग बताया है इस पर बहुत कम लोग चल पाते हैं। क्यों, कि गुरुदेव बताते हैं कि देखो हमारे यहाँ पर कुछ तो हैं स्टोन मैन भी हैं, स्टोन मैन तो एकदम तामसिक है, तामसिक लोग हैं। कुछ लोग वेजिटेबल मैन भी हैं, कुछ एनिमल मैन भी हैं, उनकी प्रकृति जो है पशुओं की तरह है। जब कोई मैन मैन होगा तब उसकी जो है फर्दर ट्रांसफॉर्मेशन होगी। जब वो मैन मैन होगा तभी उसकी ट्रांसफॉर्मेशन होगी, उसके पहले तो होगी नहीं। तो इसलिए बहुत कम लोग इस साधना के अंदर आते हैं।
तपस्वीभ्योधिको योगी, तपस्वीभ्योधिको योगी, ज्ञानिभ्योपि मतोधिकः, ज्ञानिभ्योपि मतोधिकः, कर्मिभ्यश्चाधिको योगी, कर्मिभ्यश्चाधिको योगी, तस्मात् योगी भवार्जुन, तस्मात् योगी भवार्जुन, तपस्वीभ्योऽधिको योगी, ज्ञानिभ्योऽपि मतोऽधिकः, कर्मिभ्यश्चाधिको योगी, तस्माद् योगी भवार्जुन।
अब भगवान जो है ऐसे योगी की महिमा बताते हैं, ऐसे योगी की महिमा बताते हैं कि वो सबसे सर्वश्रेष्ठ है। तपस्वीभ्य अधिक योगी, तपस्वियों में भी यह योगी श्रेष्ठ है। जितने भी तपस्वी हैं, हम देखेंगे तपस्वी किसको कहते हैं, ये योगी श्रेष्ठ है। तो यहां पर योगी का माने क्या है, यहां पर योगी का माने परम योगी है, परम योगी। तो आपको परम योगी के बारे में हमने आगे भी बताया है, परम योगी कौन है। तो जब हम श्लोक 32 की चर्चा कर रहे थे तब आपको हमने बताया था कि मन की 7 भूमिका होती हैं योग वशिष्ठ के हिसाब से। 5वीं भूमिका, 6ठी भूमिका और 7वीं भूमिका के अंदर जो होते हैं उनको हम परम योगी कहते हैं। ऐसे परम योगी जिसके पास में ब्रह्म ज्ञान है और उसमें वो स्थित हैं, ऐसे योगी क्या कहते हैं, बोले तपस्वी से अधिक योगी। तपस्वियों से बहुत ऊपर हैं वो, श्रेष्ठ हैं। तपस्वी कौन है, तपस्वी वो लोग हैं कि जिन्होंने अपने को विषयों के भोगों से अलग रखा है, केवल विषयों के भोगों से अलग रखा है। हमने तब क्या मौन करके बैठे रहेंगे, 1 साल तक एक पांव पर खड़े रहेंगे, कांटे के बिस्तर के ऊपर सोएंगे, ये सब तपस्वी हैं, तप कर रहे हैं सब। तो इन सबसे परम योगी जिसने ब्रह्म ज्ञान प्राप्त किया और उसके अंदर निष्ठ है, वो निश्चय ही वो श्रेष्ठ है। फिर कर्मिभ्य च अधिक योगी, सकाम करने वालों में भी परम योगी श्रेष्ठ है, क्योंकि सकाम कर्म तो बहुत नीचे है। सकाम कर्म करने के बाद में फिर तो निष्काम कर्म आएगा, निष्काम कर्म करने के बाद में फिर आप आस्ते 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 फिर बढ़ेंगे, आपका मन शुद्ध होगा, निष्काम कर्म से मन शुद्ध होगा, मन शुद्ध होगा तो उसके बाद में आप श्रवण मनन निधि ध्यान करेंगे। मगर परम योगी ये तो ये रास्ता तय कर चुका है, वो तो श्रवण मनन निधि ध्यान के पथ पर निकल चुका है और उसको ब्रह्म ज्ञान प्राप्त भी हो चुका है। तो कर्मीभ्य से भी श्रेष्ठ है। अच्छा, ज्ञानीभ्यापि मत अधिक, बीच में एक और था दूसरे पाद में, ज्ञानीभ्यापि मत, शास्त्र ज्ञानियों में भी परम योगी श्रेष्ठ माना गया है। ज्ञानम अत्र शास्त्र पांडित्यम, केवल पढ़ते जा रहे हैं, पढ़ते जा रहे हैं, पढ़ते जा रहे हैं, खत्म ही नहीं होती है पढ़ाई। बहुत लोग होते हैं ना पढ़ते ही जाते हैं, इसमें मास्टरी की, उसमें मास्टरी की, उसमें मास्टरी की, कितने कितने सब्जेक्ट में मास्टरी करके बैठे रहते हैं। भगवान कहते हैं कि जिन्होंने केवल अध्ययन किया है, जिनको अप्रोच अनुभूति नहीं हुई है, उससे भी ये परम योगी श्रेष्ठ है। तस्मात योगी भवार्जुन, हे अर्जुन इसलिए तुम परम योगी बनो, परम योगी बनो। तो कर्मयोगी में कौन है, कर्मयोगी के अंदर जो हमने इस अध्याय में 24 से लेके 30 तक जो यज्ञ देखे थे, कई यज्ञों का जिक्र यहाँ पर भगवान ने किया था, जो उसकी प्रैक्टिस करते हैं वो अभी भी कर्म के अंदर में हैं। तो भगवान कहते हैं कि परम योगी जो है इन सब से, तपस्वी से, ज्ञानी से और कर्मी से श्रेष्ठ है। लास्ट श्लोक
योगिनामपि सर्वेषां योगिनामपि सर्वेषां मद्गतेनान्तरात्मना मद्गतेनान्तरात्मना श्रद्धावान् भजते यो माम् श्रद्धावान् भजते यो माम् समेयुक्ततमो मतः समेयुक्ततमो मतः योगिनामपि सर्वेषां मद्गतेनात्मरात्मना श्रद्धावान् भजते यो माम् समेयुक्ततमो मतः
योगिनाम मतलब योगी, कई किस्म के योगी हैं। देखो योगी मतलब जो ध्यान करने वाला है, कैसे कई किस्म के हैं। देखो कुछ लोग ध्यान करते हैं एक सिंबल के ऊपर में है, एक सिंबल एक प्रतीक ले लेते हैं, किसी भगवान का प्रतीक ले लिया, कोई एक जो है त्राटक करता है मोमबत्ती की लौ के ऊपर, वो प्रतीक हो गया, प्रतीक हो गया। या कोई जो है एक घर में बैठा हुआ है, एक लाल बल्ब जल रहा है, प्रतीक हो गया, चलो इसके ऊपर में आप ध्यान करो। तो एक प्रतीक लेके कुछ योगी करते हैं। कुछ योगी क्या करते हैं, कुंडालिनी पर करते हैं, कुंडालिनी डिफरेंट कुंडालिनी के चक्र के ऊपर में ध्यान करते हैं, वो भी ध्यान कर रहे हैं। पर इन सब में जो आत्मा पर ध्यान करता है वो सर्वश्रेष्ठ है। तो योगी कई किस्म के हो गए, एक जो है प्रतीक लेके कर रहा है, कोई सिंबल लेके कर रहा है, कोई कुंडालिनी पर कर रहा है, कोई जो है आत्मा पर कर रहा है। तो इन तीनों में जो आत्मा पर जो ध्यान कर रहा है वो सर्वश्रेष्ठ है। वो कैसे कर रहा है, श्रद्धावान भजते, उसकी श्रद्धा भी है और भजते भक्ति भी है पूरी, उसमें भक्ति से कर रहा है। यह मांस में युक्त में, और वो मेरे ऊपर, मेरे वासुदेव के ऊपर में वो ध्यान कर रहा है। दूसरे ध्यान कैसे हो सकते हैं, रुद्र आदित्य आदि देवों का भी लोग ध्यान करते हैं, ये सब छोटे छोटे देवता हैं, छोटे छोटे देवता हैं, तो इनके अधिकार में भी छोटे छोटे उनको पावर दिए हुए हैं। और उनको कहा गया है कि भाई तुम्हारे पास में कोई पूजा करने आए, सूर्य भगवान की पूजा करे, ये नियम है, और ये नियम पालन करेगा तो उसको आपको अधिकार है कि ये उसको फल दे देना। अब वहां पर जो है सूर्य देवता और कुछ नहीं कर सकते हैं, आपने अगर पूरा नियम पालन किया है तो सूर्य देवता को फल आपको देना है। मगर अगर आप वासुदेव की अगर करें ध्यान करें तो वो जो है अपने भक्तों का जो है वो हित देखते हैं, आपने जो मांगा वो नहीं दे देंगे, आपने जो मांगा वो नहीं देंगे, वो आपके भविष्य के बारे में जानते हैं कि ये मेरा भक्त है, अब ये धन मांग रहा है, इसको अगर धन दे देंगे तो ये तो और फंस जाएगा। तो भगवान कहेंगे तुम्हारे पास जो धन है वो भी मैं ले लेता हूं, तुमको धन नहीं दूंगा, तुम पूजा करो, तुम कितनी मर्जी पूजा कर लो, क्योंकि भगवान को पता है ये मेरा भक्त है, सही रास्ते पर चल रहा है, बहुत आगे आ चुका है और ये फिर फंसने जा रहा है। तो भगवान कहते हैं श्रद्धावान भजते ये इमाम सह ये युक्तम मत है, वो युक्तम मतलब परम श्रेष्ठ मान्य है, जो भगवान का वासुदेव भगवान के ऊपर में या आत्मा के ऊपर में जो कर रहा है ध्यान कर रहा है वो सर्वश्रेष्ठ है। मत चित्त मत परा श्रद्धावान योगी, जिसका अंतःकरण एक स्वरूप हो गया है वो सर्वश्रेष्ठ है, जिसकी आत्मा और भगवान की आत्मा एक हो गई है वो सर्वश्रेष्ठ है। देखो यहां भजन का मतलब जो है यह कीर्तन या पूजा नहीं है। कई बार भजन लोग ये भी समझने लगते हैं, भजन के बहुत मायने होते हैं, भज गोविंदम भज गोविंदम भज गोविंदम, भज के तीन बार भज का उसके तीन माने हैं। तो भज का आप यही नहीं समझना कि भजन हो गया बस अब कीर्तन करने बैठ जाओ, वो भजन नहीं है, कि पूजा करें वो भजन, ऐसा नहीं है। यहां भज का मतलब होता है कि आप भगवान के अंदर मन लगा रहे हैं, उनके ऊपर में ध्यान कर रहे हैं। तब भगवान ने इस अध्याय में विस्तार से ध्यान की विधि बताई है। ऐसा विस्तार हमको और कहीं नहीं मिलता है, किसी उपनिषद में ऐसे विस्तार से चर्चा नहीं की गई है। अच्छा, ये अंतिमवां जो श्लोक है, 47वां श्लोक है, ये बीज श्लोक है अगले अध्याय के लिए। इसको हम लोग बीज श्लोक कहते हैं। अगले अध्याय का संबंध इस श्लोक के साथ से आगे बढ़ता है, तो उसको हम लोग अब देखेंगे अगले सत्र के अंदर। तो हमारा ये 6वां अध्याय यहाँ समाप्त होता है पुष्प विभाग के।
ओम तत्सद इति श्रीमद् भगवत गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्म विद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुन संवादे ध्यान योगो नाम षष्ठोऽध्यायः।
तो हमारा 6वां अध्याय यहाँ खत्म हुआ। अगली कक्षा जो है होगी अगस्त महीने में होगी, जुलाई में क्लास नहीं होगी। हम कुछ दिन के लिए मिनियापोलिस जा रहे हैं, तो आप लोग को होमवर्क देते हैं। आपने 6 अध्याय पढ़ लिए हैं, होमवर्क थोड़ा होना चाहिए, आज तक नहीं किया है।
1 महीना टाइम है।
1 महीना टाइम है। देखो, सबसे बढ़िया होमवर्क तो ये होगा कि आप ध्यान योग की पूरे श्लोक का थॉट फ्लो लिखिए, कैसे भगवान ने उस अध्याय को शुरू किया कर्मयोग से, फिर बहिरंग साधना अंतरंग साधना करते हुए, फिर ज्ञानी की दृष्टि, ब्रह्मार्पण ब्रह्म भी बताया, फिर हमले लिए साधना बताई, उन्होंने यज्ञ बताया, कितने किस्म के यज्ञ बता दिए, ऐसे यज्ञ करते रहो। उसके बाद में भगवान कहते हैं कि ध्यान करना होगा, कैसे ध्यान करना होगा ये भी बताया, फिर ध्यान में कैसे बाधा आ सकती है, अर्जुन ने पूछा प्रश्न कि मन को स्थिर करना बहुत मुश्किल है, फिर भगवान ने उसका उत्तर दिया, वो क्या उत्तर था, वैराग्य क्या है, अभ्यास क्या है। देखो, अभ्यास और वैराग्य हमने विस्तार से उसका विवरण किया है जब भी वहाँ जब टॉपिक आया था। अब आप केवल उत्तर में यही नहीं लिख देना कि मन को स्थिर करने के लिए वैराग्य और अभ्यास करना है। अभ्यास का माने क्या है, वैराग्य का माने क्या है। फिर उसके बाद में जो प्रश्न अर्जुन ने किया कि जो साधना कर रहे हैं ये किसके बारे में है, सर्व कर्म सन्यासी के बारे में है, जो श्रवण मनन निधि ध्यासन कर रहा है, इसका मतलब वो निवृत्ति मार्ग में आ गया है, इसका मतलब उसने प्रवृत्ति मार्ग का रास्ता तय कर लिया है। प्रवृत्ति मार्ग का रास्ता तय करने का मतलब उसने कर्मयोग खत्म कर लिया है, उसका मन शुद्ध हो चुका है, वो अकर्ता बन चुका है, उसके बाद में वो ध्यान में बैठा है टू वेरीफाई कि हमने जो ज्ञान प्राप्त किया है वो सही है कि नहीं है, ऐसी स्थिति के अंदर वो है। अब वो अगर मान लो किसी कारण जो है उसको योग भ्रष्ट हो गया, तो योग भ्रष्ट के 2 कारण हमने आपको बताए, उन 2 कारणों के उनकी 2 किस्म के उसके गति होती है। एक गति उसको ऊंचे लोक से लाके फिर उसको सूचि नाम श्रीमताम गेह में जन्म हुआ, दूसरा जो है उसको योगी कुल में लाते हैं। तो उन 2 जो है साधना जो बताई उनकी जो है कैसे कैसे वो आगे बढ़ते हैं, तो वो अगर विस्तार से अगर आप लिखो तो बहुत ही अच्छा होगा। और अगर नहीं कर पाए इतना, अल्टरनेटिव शॉर्टकट, शॉर्टकट ये है कि अर्जुन के 2 प्रश्न हैं, मन चंचल है कैसे स्थिर होगा, दूसरा प्रश्न है योग भ्रष्ट का कैसे क्या होता है, क्या गति होती है, तो इसको आप विस्तार से लिखिए, 2 प्रश्नों का उत्तर विस्तार से लिखिए। अर्जुन के 2 प्रश्न थे, उनको आप विस्तार से लिखिए। अच्छा, लिख के फिर आपको मेरे पास भेजना होगा। अच्छा, ये कंपल्सरी नहीं करते हैं, आपकी इच्छा हो तो भेज देना, आपकी इच्छा हो तो भेज देना, मगर हमारे वेदांत कोर्स में ना कंपलसरी हुआ करता था, आपको देना है और समय भी निर्धारित था, आपको कल सवेरे इसका उत्तर देना है और सबको जमा कर देना है। नहीं, आप किसी में मत लिख लो, अंग्रेजी में लिख लो, आप गुजराती में मत लिखना, फिर मेरे को कुछ समझ नहीं आएगा। आप अंग्रेजी में लिख लो तब भी होगा, मगर आपका जो है वो मतलब जो ज्ञान जो आपको मिला है वो संशय रहित होना चाहिए। एकदम आपको हमने ठीक ठीक से बताया है कि कैसे योग भ्रष्ट दो किस्म के हो सकते हैं, क्या की उनकी गति होगी, ये आप ठीक से लिखेंगे ना तो मनन आपका हो जाएगा उसके ऊपर में। और पूरे अगर 47 श्लोक का अगर आपने थॉट फ्लो लिख दिया कैसे भगवान ने शुरू किया ये अध्याय और कैसे अग्रसर हुए, अंतरंग साधना बहिरंग साधना ये सब बताते हुए भगवान कैसे आगे बढ़े हैं, तो और भी अच्छा होगा। आपको पसंद है क्या है होमवर्क? कोई सिर नहीं हिला रहा है, सब चुप हैं।
अशोक जी लिखेंगे।
नहीं, अशोक जी भी माथा नहीं हिला रहे हैं। लिखेंगे, आज ठीक है, लिखिए, अच्छा होगा आपको। मतलब फिर आप सुनेंगे, सुनने में तो एक तो आपका सत्संग चालू रहेगा, सत्संग चालू रहेगा, और दूसरी मजे की बात होगी जब हम सातवां अध्याय शुरू करेंगे ना तब आपको जो है लिंक जो है बड़ा अच्छा लगेगा, मतलब उसका लिंक बड़ा अच्छा होगा। ठीक है, ओ पूर्णमद पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। हरि ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम।